Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mahapurushon ke pavan charno mein naman karte huye, Kathopanishad बालक नचिकेता आचार्य यम के सामने अपना प्रश्न अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने आचार्य यम के सामने रखा। कल किसी साधक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि अनुबंध चतुष्टय बालक नचिकेता के जीवन में दिखाई देता है। अनुबंध चतुष्टय में चार चीजें हैं, शब्द से ही अवगत होता है। अनुबंध चतुष्टय, चतुष्टय माने चार, और अनुबंध माने जिसके आने से, जीवन में जिसके जानने से व्यक्ति साधना से परमात्मा से बंध जाए, उसके तरफ की प्रवृत्ति घटे, उसी को अनुबंध कहते हैं। तो उसमें जो अधिकारी प्रथम अनुबंध चतुष्टय का हिस्सा है, अधिकारी का अर्थ है जिसके जीवन में अधिकार है। आप प्रक्रिया ग्रंथों में इसका अवलोकन करते हैं तो कहा जाता है कि जिसके जीवन में निष्काम कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि प्राप्त है, निष्काम उपासना के द्वारा जिसका चित्त विक्षेप शून्य हो गया है, केवल आत्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, और आत्मविषयक ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष को पाना चाहता है उसको अधिकारी कहते हैं। निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, निष्काम उपासना के द्वारा विक्षेप की निवृत्ति, ये दो चीजें जब जीवन में घटती हैं साधक के, तो उसके जीवन में साधन चतुष्टय घटता है। अनुबंध चतुष्टय के अंदर जो अधिकारी है ना, ये विवेकादि साधन चतुष्टय अधिकारी के ही लक्षण है। साधन चतुष्टय जो बोला जाता है वो अधिकारी के अंदर है, बाहर नहीं है। साधन चतुष्टय किसके लिए? जो साधन चतुष्टय कल मैंने निरूपित किया, विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन संपत्ति अधिकारी के अंदर है। हाँ, ये साधन चतुष्टय के अंदर है, बाहर नहीं है। विवेक अधिकारी का लक्षण है, वैराग्य अधिकारी का लक्षण है, समाधि संपत्ति अधिकारी का लक्षण है, मुमुक्षुता अधिकारी का लक्षण है। अधिकार जिसमें है उसको अधिकारी बोलते हैं, और प्रत्येक कार्य का अपना अधिकार होता है। वेदांत का अधिकार अलग, न्याय का अधिकार अलग, मीमांसा का अधिकार अलग, योग का अधिकार अलग, यहां तक कि संसार में भी अनेकों कार्य करते हैं हम, उसका भी अधिकार अलग अलग होता है, और वो अधिकार जिसमें होता है उसको अधिकारी बोलते हैं। ये जो साधन चतुष्टय है ना, ये जीवन में जिसके हो वो अधिकारी है। विवेक जिसके जीवन में है, वैराग्य जिसके जीवन में, समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, ये अंतरंग, ये अधिकारी के अंतरंग लक्षण है। अंतरंग माने बहुत आवश्यक है, और यही तो अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? चित्त निर्मल हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, मतलब क्या हुआ? विवेक जगा, आपका अंतःकरण यदि विक्षिप्त है तो आसक्तियां होगी उसमें, और वैराग्य आया जीवन में, आपका अंतःकरण बिल्कुल स्थिर होगा। वैराग्य की अवस्था में व्यक्ति का चित्त संसार में नहीं जाएगा, उपरति की अवस्था में व्यक्ति का चित्त संसार में नहीं जाएगा। आपको मैंने कहा था, श्रद्धावान व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय संयम, तत्परता आदि दिव्य गुणों का आविष्कार होता है। बालक नचिकेता के जीवन में सारी अधिकारी संपदा है, और जो विषय प्रयोजन और संबंध, किसी साधक ने पूछा कि ये विषय प्रयोजन संबंध ये क्या चीज है, विवेकादि अधिकारी के अंदर है, और संबंध विषय और प्रयोजन ये तीन चीजें बाकी की हैं। तो हम लोग प्रयोजन से शुरू करते हैं, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना कोई प्रवृत्त नहीं होता है। आप सत्संग में प्रवृत्त होते हैं, आपको मालूम है आपको उससे क्या मिलने वाला है। आप संसार में प्रवृत्त होते हैं, आपको मालूम है ना आपको क्या मिलने वाला है। प्रयोजन का बोध व्यक्ति में प्रवृत्ति को निर्मित करता है। आपके जीवन में मालूम पड़े इसका प्रयोजन क्या है तो आप चल पड़ते हैं उस दिशा में। आपको मालूम पड़ा कि वेदांत का, वेदांत के श्रवण का, सत्संग का प्रयोजन है मोक्ष को पाना, आपको मालूम पड़ा, और मालूम पड़ने के बाद मोक्ष को चाहने वाले आप हैं, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये प्रयोजन का प्रयोजन है। और विषय माने ग्रंथ का विषय क्या है, सब्जेक्ट जैसे बोलते हैं ना, वेदांत का विषय क्या है, आपके कठोपनिषद का विषय क्या है, ये जीव ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करना, जीव का, ब्रह्म का, जगत, पंचकोश आदि, और तद अतिरिक्त आत्मबोध, एकत्व बोध प्रतिपादन करना है आपके कठोपनिषद का विषय है। और संबंध, वस्तुतः जो संबंध का जो ज्ञान है ना, ये आपको संबंधी में ले जाता है, संबंधी में ले जाता है, संबंध का ज्ञान संबंधी में ले जाता है। आपको चाहिए मोक्ष, और आपको पता ना हो कि मोक्ष मिलेगा कैसे, किन साधनों से मिलेगा, तो आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए संबंध का ज्ञान भी साधन में प्रवृत्ति कराने के लिए है। कार्य कारण का जब बोध व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति कारण में प्रवृत्त होता है। आपको भूख लगी है, आपको क्षुधा मिटाना है, आपको मालूम है कि भोजन करने से क्षुधा मिटती है, तो आप भोजन में प्रवृत्त होते हैं। यदि आपको न मालूम हो कि भोजन करने से क्षुधा मिटती है तो आप भोजन में प्रवृत्त कैसे होंगे। कार्य कारण भाव का जो संबंध ज्ञान है वो हमें कारण में प्रवृत्ति दिलाता है। आपको मालूम है कि ये बीज अमुक फल तक हमको ले जाता है, इसलिए उस बीज में प्रवृत्ति होती है। जहां पर भी कार्य कारण का भाव हमें अवगत होता है वहां हम कारण में प्रवृत्त होते हैं। साध्य साधन का बोध, प्राप्य प्रापक बोध बहुत सारे हैं, जन्य जनक बोध संबंध कोटि में है ये, तो हम अपने आप प्रवृत्त हो जाते हैं। ये अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध मुमुक्षुता, ये अनुबंध चतुष्टय के अंदर मुमुक्षुता का अर्थ है मुक्तुम, मुक्तिम इच्छा मुमुक्षा, आप मुक्त होना चाहते हैं, ये मुमुक्षा है। और ये मुमुक्षा जिसमें है वो मुमुक्षु है। अभी मुझे किसी ने पूछा जिज्ञासा और मुमुक्षा में क्या अंतर, नचिकेता जिज्ञासु है कि मुमुक्षु है? वस्तुतः ये दो चीजें दो नहीं है, केवल अभिव्यक्ति के भाव अलग हैं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन चाहता है या कोई व्यक्ति क्षुधा मिटाना चाहता है, इसमें अंतर क्या है? आप भोजन चाहते हैं ये भी एक बात है, और आप क्षुधा मिटाते हैं ये भी एक बात है, लेकिन दोनों में कोई अंतर है क्या? आप भोजन चाहते हैं और आप अपनी क्षुधा मिटाना चाहते हैं, या आप तृप्ति चाहते हैं या आप क्षुधा की निवृत्ति चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है, आपकी क्रिया में कोई अंतर नहीं, दोनों का उद्देश्य एक है। आप तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं तो आप क्षुधा को मिटा रहे हैं, आप क्षुधा को मिटा रहे हैं तो आप तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक कालावच्छेद हैं। कोई व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है या अज्ञान को मिटाना चाहता है, कोई परमात्मा को पाना चाहता है या कोई मोक्ष को पाना चाहता है, दोनों एक ही चीजें हैं। मोक्ष को पाना और परमात्मा को पाना कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा है क्या कि परमात्मा को पाने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, कि परमात्मा को पाना ही मोक्ष को पाना है? आपको समझाने के लिए कहा जाता है कि आप परमात्मा को पाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वेदांत में परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष रूप है। यहां अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष है, इसलिए दोनों अलग नहीं है, ये कहने के ढंग अलग हैं। इसलिए मुमुक्षुता का अर्थ है जिज्ञासा और जिज्ञासा का अर्थ है मुमुक्षुता। आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर ऊपर आपको भेद मालूम पड़ेगा, लेकिन आप सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो कोई भेद नहीं मालूम पड़ेगा, बात एक ही है। बालक नचिकेता के जीवन में वो सारी चीजें हैं, अधिकारी संपदा के अंतर्गत विवेकादि हैं, और उन्हें संबंध बोध है, प्रयोजन का बोध है, उनकी जीवन में मुमुक्षुता भी है, आत्मज्ञान को पाने की जिज्ञासा, तभी तो इन्होंने प्रश्न किया है। मुमुक्षुता जिज्ञासा उनकी जीवन में न होती तो उनका प्रश्न ऐसा नहीं होता। बालक नचिकेता ने अपने जीवन में बहुत गहरे भाव को व्यक्त किया, एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम् वरानामेष वरस्तृतीयः, मैं आपके द्वारा ये जान जाऊं शिक्षित होता हुआ आत्मा क्या है, वो है भी कि नहीं है। यहां ध्यान देना, केवल यहां अस्तित्व का बोध प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। आचार्य यम इतना ही कह देते आत्मा है तो क्या नचिकेता संतुष्ट होते? केवल इतना ही कह देते वो है और मैं उसका अनुभव करता हूं, इतने कहने से नचिकेता रुकने वाले नहीं थे। इसलिए यहां सर्वांगीण बोध कराना सर्वांगीण बोध को प्राप्त होना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। हमारे सारे शास्त्र प्रश्न से शुरू होते हैं। आपके जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हो, चाहे वेद, उपनिषद, स्मृति, इतिहास, आपके जो भी ग्रंथ हैं, प्रश्न से शुरू होते हैं। उसका कारण क्या है? ज्ञान है गुरु में, लेकिन गुरु तब तक नहीं बोलते हैं जब तक कोई पूछने वाला ना हो। केवल व्यक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति का श्रोता होना पर्याप्त है। व्यक्ति का होना बोलने के लिए केवल व्यक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति में श्रोतृत्व, व्यक्ति का श्रोता होना बहुत आवश्यक है। आप एक व्यक्ति मिल जाते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं तो उसका कुछ मूल्य नहीं रहता है। आप व्यक्ति हैं और हम बोल रहे हैं, केवल निमित्त बना के बोल रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि सुनने वाला चाहिए, और केवल सुनने वाला होने से काम नहीं चलता। आपके पास कान है, आप सुनेंगे। शास्त्र कहता है उतने मात्र से बोलना आवश्यक नहीं है। आदमी बोलता जाता है, व्यक्ति मिला और बोलता जाता है, जबरदस्ती सुनाता है, सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है, और हम बोलते जाते हैं। इसलिए सांख्य तत्व कौमुदी में एक कारिका है, उन्मत्तवत उपेक्षेत। आप बिना जिज्ञासा ज्ञान प्रतिपादन करेंगे, ज्ञान देंगे, तो उन्मत्त की तरह, पागल की तरह आप उपेक्षित हो जाएंगे। इसलिए केवल सुनने वाले की नहीं, उसमें जिज्ञासा की भी जरूरत नहीं, प्रश्न की भी जरूरत नहीं। सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं, सामने वाले का प्रश्न है कि नहीं। इसलिए केवल सुनने वाला नहीं, प्रश्न करता हो, जिज्ञासु हो, सुनना चाहता हो, तब ज्ञान दे, उपदेश करे, तो ज्ञान सार्थक है, ज्ञान मूल्यवान है। इसलिए समर्पण स्वीकृति है, और उस स्वीकृति का द्योतन पाना चाहने का द्योतन प्रश्न है। आपके सारे ग्रंथ प्रश्न से शुरू, शिष्य से शुरू होते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया और शुद्ध जी महाराज ने उत्तर दिया। नारद जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया, गीता बनी। आपके अनेकों ग्रंथ प्रश्न से ही शुरू होते हैं, और इसीलिए ज्ञान मूल्यवान है। आपके प्रश्न के अनुसार यदि उत्तर होगा तो आपको, आपके मन को छुएगा, वो आपके जीवन का वो चरित्र बनेगा, व्यवहार बनेगा, क्योंकि आपका प्रश्न है। यदि आपके प्रश्न को छोड़कर के कुछ कहा जाए तो आप बोलेंगे कि ये मेरा प्रश्न नहीं है। ये तो ऐसा ही हुआ ना, जैसे किसी व्यक्ति ने पानी मांगा और आप उसको कोई खाने की चीज दे रहे हैं, वो कहेगा कि भैया मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए, और आप उसको कोई दूसरी खाने की चीज दे रहे हैं। उसकी वो जिज्ञासा नहीं है, उसकी वो प्यास नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है, उसी के अनुसार जब उत्तर मिलता है तो वो उत्तर आपके दिल को छू जाता है, अंतःकरण को छू जाता है, और वो आपके जीवन का अनुकरण बनने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने वाला व्यक्ति कुछ और ही उत्तर देने लगता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि ये हम क्या पूछ रहे हैं और ये क्या उत्तर दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, तभी प्रश्नकर्ता में संतोष होता है, तभी उसका अज्ञान मिटता है। इसीलिए प्रश्न का महत्व यहां समर्पण, या एतत् विद्या मनु शिष्टस्त्वयाहम्, आपके द्वारा मैं शिक्षित हुआ, ये जो वचन है ये बहुत सारगर्भित वचन, ये स्वीकृति है, समर्पण का वचन है। मैंने शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वरानाम एष वरस तृतीयः, अपनी जिज्ञासा मुमुक्षुता सामने रखी और बालक नचिकेता ने कहा कि यह वर मेरा तृतीय वर है, तीसरा वर है। बात सुनी आचार्य यम ने, बड़े प्रसन्न हुए अंदर से, लेकिन वे बाहर से परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मोक्ष का अधिकारी है, लेकिन चलो थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं कि यह वास्तविक प्रश्न है भी कि नहीं है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं इसलिए पूछते हैं कि सामने वाले को इसका उत्तर आता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। और कई बार हम टाइम पास करने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं, कोई बहाना चाहिए, बात करने का कोई बहाना चाहिए, बैठने का कोई बहाना चाहिए, तो आदमी बहाना बना देता है कि समय है ना, 5 मिनट समय है। अब वो 5 मिनट का समय पास करना है तो आदमी पूछ लेता है, महाराज इसका अर्थ क्या है। और जब 5 मिनट पूरे हो जाते हैं तो उत्तर मिले बिना उठ के चला जाता है, बोलते बस बहुत हो गया। प्रश्न पूछने के बहुत सारे बहाने होते हैं। एक बात मुझे याद आई, परम पूज्य महामंडलेश्वर माधवानंद जी महाराज, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई। जब प्रवचन करते थे तो बहुत सारे लोग आके प्रश्न पूछते बैठते, उन्होंने सोचा कि चलो ये प्रश्न पूछने वाले के सामने मैं अपना एक प्रश्न रख लेता हूं। उन्होंने कहा कि भैया जितना तुमको प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ लेना, लेकिन एक मेरी शर्त है, आप जब प्रश्न पूछोगे तो उस प्रश्न का मूल्य आपको रखना पड़ेगा, और वो मूल्य एक प्रश्न का 100 रूपये, ज्यादा नहीं है। आपको प्रश्न पूछना है 100 रूपया रखो और उसका उत्तर सुनो, यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और वही प्रश्न दोबारा पूछना है तो फिर आप 100 रूपये रखो। बात तो मजाक में आपको लगती होगी, मजाक लगती होगी, लेकिन मैं पूछता हूं उसके बाद फिर कितने लोगों ने प्रश्न पूछे होंगे, कितने लोगों ने आके गीता रामायण महाभारत के प्रश्न उनके सामने रखे होंगे। महामंडलेश्वर जी महाराज जी कहते उसके बाद किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा क्योंकि 100 रूपये देकर के प्रश्न पूछना पड़े तो कौन पूछेगा। आप समझ गए ना, ये मूल्यता, ये प्रश्न की मूल्यता, मौलिकता। और आपके जीवन में सचमुच प्रश्न है, आपका प्रश्न है, वो आपका प्रश्न है, तो आप जरूर उसका उत्तर देंगे। आपका प्रश्न होगा तो जरूर गुरु उत्तर देगा, लेकिन वो प्रश्न आपका नहीं है, आपका होगा तो आप मूल्य चुका लेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप फीस जमा करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो प्रश्न आपका है। और यही परीक्षा हो जाती है। आज बालक नचिकेता की परीक्षा ले रहे हैं, ये प्रश्न वास्तविक है कि नहीं। नारद जी महाराज जी को जब ध्रुव मिले थे तो नारद जी महाराज जी ने भी ध्रुव की परीक्षा ली थी। पहले तो प्रसन्न हुए, वाह 5 साल का बालक, और वो चल पड़ा है परमात्मा को पाने के लिए, साधना करने के लिए, तप करने के लिए। समझा दिया, अरे बोले इतनी कम उम्र में और तुम साधना करने के लिए निकल पड़े, क्या ये उम्र साधना करने की है। बोले अपमान मान सम्मान तो दुनिया में होता रहता है, इस भाव का त्याग करो और तुम घर जाओ, शादी विवाह करो, गृहस्थाश्रम का पालन करो, और जब वृद्धावस्था आएगी तब तुम भगवान का भजन करना, तब तुम वन में जाना। ये परीक्षा दी, लेकिन इसके उत्तर में ध्रुव ने कहा कि नहीं, मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प, मैं परमात्मा को पाऊंगा, मैं साधना करूंगा, और आपको मदद करना है तो ठीक है, नहीं तो राम राम। वहां अपेक्षा नहीं है, न उपेक्षा, नारायण वहां बिल्कुल अनपेक्ष, वहां बिल्कुल अनपेक्ष जीवन, संसार से अनपेक्ष, अनपेक्षो सुचिर दाक्षः, न वहां अपेक्षा है। साधु की जीवन में न अपेक्षा होती और न उपेक्षा होती, साधु का जीवन अनपेक्ष होता है। और चल पड़े। नारद ने कहा रुको बालक, और उनके बाद उन्होंने मंत्र दिया, दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनकी साधना बनी। गुरु परीक्षा भी लेता है, उत्तर देने वाला देखता भी है कि ये प्रश्न कहां से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। देवै रत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामो परोत्सि रतिमा सृजैनम्। इस प्रश्न के ऊपर देवताओं ने भी सोचा था, विचार किया था, और उनको भी ये समझ में नहीं आया। पानी की तो बात ही दूर, नहीं सुविज्ञेय अनुरेश धर्म, ये बड़ा सूक्ष्म है। आत्मज्ञान तुम पाना चाहते हो, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, देवताओं के लिए भी कठिन है, बोले मनुष्यों की तो बात ही छोड़। मैं आपको एक बात पूछता हूं, ये जब बात आचार्य यम जब कह रहे थे तो बालक नचिकेता क्या सोच रहे होंगे? क्या उन्हें कठिनता का बोध होता होगा? क्या उनको ऐसा लग रहा होगा कि सचमुच ये कठिन है? आज बालक नचिकेता और खुश हो रहे थे ये सुनकर, ओहो मैंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। देवता भी जहां पर सोचकर जिसको पानी पाए, इसका मतलब कि बात महत्वपूर्ण है, इसका मतलब कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने प्रश्न पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके प्रश्न की प्रशंसा हो रही हो, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे प्रश्न का महात्म्य कथन कर रहे हो आचार्य यम। नारायणी सचमुच जो आत्मज्ञान है ये सचमुच कठिन, इसलिए श्रुतियां भी कहती हैं, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। ये मार्ग जो है ना, ये वैराग्य का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है, ये छोड़ने का मार्ग है, आग्रह दुराग्रह मान सम्मान आदि से ऊपर होने का मार्ग है, ये सचमुच कठिन मार्ग है। श्रुति ने तो कहा कि क्षुरस्य धारा, ये तलवार के धार पर, छुरे के धार पर चलने जैसा मार्ग है। कभी आपको ऐसा लगा क्या? आप वेदांत का श्रवण करते हैं, आप वेदांत के अधिकारी हैं, कभी ऐसा लगा क्या कि हम छुरे के धार पर चल रहे हैं? और श्रुति कहती कि छुरे के धार पर चलने जैसा मार्ग है। पहली बात, हम चले भी कि नहीं? रास्ते की कठिनाइयां चलने वाले को मालूम पड़ती हैं, कितने कांटे हैं, कितने कंकर हैं, ये चलने वाले को मालूम पड़ती हैं, बैठने वाले को नहीं मालूम पड़ती हैं। ये सचमुच कठिन मार्ग है, अंदर से संघर्ष, विकारों पर नियंत्रण, कामनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण करना है, अंतर संघर्ष, अंतर द्वंद्व ग्रसित मन हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हमें टांग देता है, खूंटे की तरह टांग देता है। आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका कपड़ा कहीं अटक गया, आप वन में जा रहे हैं, बेर का वन, कांटों का वन है और घना वन है, कभी आप बेर के पेड़ के पास जाके देखे नहीं होंगे, कभी आप बेर के वन में जाना, बेर के वन में आप चल नहीं पाएंगे, आपके सारे कपड़े फटेंगे, एक कांटा निकालोगे तो दूसरा अटक जाता है, दूसरा निकाल लेंगे तो तीसरा आपको अटका देता है, और वहां दो कांटे होते हैं, बेर में दो कांटे होते हैं, एक सीधा एक टेढ़ा, टेढ़ा कांटा आपको पकड़ता है और सीधा वाला चुभता है। बहुत आयोजन, बहुत व्यवस्थित है, एक कांटा आपको खींचता है और उसी के बगल में एक सीधा कांटा होता है, वो चुभता है। आप जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, वन में गुजर रहे हैं, अनेकों अटकाव हैं, भटकाव हैं, खिंचाव हैं, हम कितना कदम चलेंगे आगे? कभी आप ध्यान करना, आप जप करना, मनन करना, बैठकर आपके मन को कितनी सारी चीजें खींचती हैं, बहुत सारी चीजें खींचती हैं, केवल श्रवण ही साधना नहीं है। आप ध्यान दें, आत्मावादे श्रोतव्यो, ये श्रवण तो प्रथम सीढ़ी है और बहुत सरल है। श्रवण करना बहुत सरल है, सुनना ये बहुत बड़ी साधना है, लेकिन बहुत बड़ी साधना होते हुए भी ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। श्रवण प्रथम सीढ़ी है। श्रवण के बाद आपके जीवन में मनन आता है। आपको घर में बैठकर आप मनन करना है, मनन करना है। मन से, तन से श्रवण और मन से मनन, श्रवण से मनन कठिन है। आप एक घंटा तीन घंटा भी बैठ करके श्रवण कर सकते हैं, आप बहुत एकाग्र होकर श्रवण कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले केवल मन के साथ हैं, समाज से बिल्कुल अलग हैं। मन के साथ बैठकर आपको मनन करना है, तब देखना ये कितना सरल है। आप कितना मिनट कर सकते हैं, घंटों की बात छोड़िए, आप मनन कितना मिनट करते हैं और उस एक मिनट में, दस मिनट में आपका मन कितने बार बाहर गया, कितने बार दुनिया के बारे में सोचा, आप हिसाब लगाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे।